हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह आदित्य और सुनैना एक साथ अपने कमरे में बिस्तर पर लिपटे हुए सो रहे थे। सूरज की रोशनी खिड़की से आती हुई सुनैना के चेहरे पर पड़ी। धूप से आंखों में चुभन महसूस हुई, जिससे उसकी आंख खुली। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने बगल में एक शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, आदित्य था। सुनैना एकदम हैरान हो गई। वो उसे ध्यान से देखने लगी। फिर उसने एकदम से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ एक बिस्तर पर? हटो, हटो तुम यहाँ से। सुनैना आदित्य को धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। आदित्य बिस्तर के किनारे पर जा पहुंचा, तभी उसकी आंख खुली। सुनैना के चिल्लाने पर आधी नींद में उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, क्या हो गया सोना, इतनी सुबह सुबह इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? और तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं तो फिर और किसके साथ जाकर सोऊंगा मैं? सुनैना ने देखा कि वो बिल्कुल भी उठने को तैयार नहीं है। उसने खुद उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया। फिर कंबल हटाते हुए वो कन्फ्यूजन में बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, सोना, ये सोना कौन है? और वैसे भी सोने का वक्त नहीं है, चुपचाप से उठ जाओ। मुझे पता है हमारी शादी हुई है, लेकिन इसके अलावा तो कोई रिश्ता नहीं है ना हमारे बीच। तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो मिस्टर आदित्य सिंघानिया? और तुम जरूर नशे में होगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी तुमने शादी वाली रात भी, और उसके बाद भी तुम जरूर नशे में ही होगे। हाँ तो यहाँ से आह। अपनी बात बोलते बोलते सुनैना की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई थी। तेज बोलने से उसे सिर में तेज़ दर्द हुआ। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। उसकी बातें और दर्द भरी आह सुनकर आदित्य की नींद पूरी तरह खुल गई। वो एकदम से बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ज़रा आराम से, भूल जाती हो क्या? तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, लेकिन इतनी तेज़ चिल्ला रही हो ऐसे सुबह सुबह, क्या हो गया बताओ मुझे। आदित्य आगे आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिश की। सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया और बोली, मेरे सिर पर चोट है, ये कैसे लगी? और तुम दूर रहो मुझसे, चोट लगी है तो क्या हुआ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और तुमसे तो अपना ध्यान भी नहीं रखा जाता, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते नशे की वजह से, और मुझे ज्ञान दे रहे हो। वो बहुत बेरुखी से बात कर रही थी। आदित्य उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसे सुनैना की फिक्र थी। वो दोबारा उसकी तरफ आते हुए बोला, सोना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, और मैं क्यों दूर रहूंगा तुमसे? मैं आधी हूँ तुम्हारा आदि, तो मुझे ऐसे ये सब क्यों बोल रही हो? पहले की तरह क्या हुआ है, तुम्हारे सिर में दर्द ज़्यादा है क्या? चलो हम हॉस्पिटल चलें। सुनैना को समझ आ गया कि उसके सिर में दर्द है। पीछे मुड़कर उसने शीशे में देखा तो अपने सिर पर बंधा हुआ बैंडेज देखा। उसने अब थोड़ी धीमी आवाज़ में बात की, लेकिन आदित्य के नज़दीक आते ही वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और अपने आप में बड़बड़ाने लगी, ये चोट मुझे? हाँ, वो मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था, हाँ, जब विराज ने मुझे प्रपोज़ किया था वहाँ उस होटल में पार्टी के बाद, हाँ, उसी वजह से मुझे ये चोट लगी होगी शायद। लेकिन उसके बाद तुम यहाँ कैसे? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, और तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? मेरा, तुम्हारा आदि, ये सब क्या है? और सोना, तुम मुझे सोना क्यों बुला रहे हो?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह आदित्य और सुनैना एक साथ अपने कमरे में बिस्तर पर लिपटे हुए सो रहे थे। सूरज की रोशनी खिड़की से आती हुई सुनैना के चेहरे पर पड़ी। धूप से आंखों में चुभन महसूस हुई, जिससे उसकी आंख खुली। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने बगल में एक शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, आदित्य था। सुनैना एकदम हैरान हो गई। वो उसे ध्यान से देखने लगी। फिर उसने एकदम से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ एक बिस्तर पर? हटो, हटो तुम यहाँ से। सुनैना आदित्य को धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। आदित्य बिस्तर के किनारे पर जा पहुंचा, तभी उसकी आंख खुली। सुनैना के चिल्लाने पर आधी नींद में उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, क्या हो गया सोना, इतनी सुबह सुबह इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? और तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं तो फिर और किसके साथ जाकर सोऊंगा मैं? सुनैना ने देखा कि वो बिल्कुल भी उठने को तैयार नहीं है। उसने खुद उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया। फिर कंबल हटाते हुए वो कन्फ्यूजन में बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, सोना, ये सोना कौन है? और वैसे भी सोने का वक्त नहीं है, चुपचाप से उठ जाओ। मुझे पता है हमारी शादी हुई है, लेकिन इसके अलावा तो कोई रिश्ता नहीं है ना हमारे बीच। तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो मिस्टर आदित्य सिंघानिया? और तुम जरूर नशे में होगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी तुमने शादी वाली रात भी, और उसके बाद भी तुम जरूर नशे में ही होगे। हाँ तो यहाँ से आह। अपनी बात बोलते बोलते सुनैना की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई थी। तेज़ बोलने से उसे सिर में तेज़ दर्द हुआ। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई।
उसकी बातें और दर्द भरी आह सुनकर आदित्य की नींद पूरी तरह खुल गई। वो एकदम से बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जरा आराम से, भूल जाती हो क्या? तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, लेकिन इतनी तेज चिल्ला रही हो ऐसे सुबह सुबह, क्या हो गया, बताओ मुझे। आदित्य आगे आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिश की। सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया और बोली, मेरे सिर पर चोट है, ये कैसे लगी? और तुम दूर रहो मुझसे, चोट लगी है तो क्या हुआ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और तुमसे तो अपना ध्यान भी नहीं रखा जाता, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते नशे की वजह से, और मुझे ज्ञान दे रहे हो। वो बहुत बेरुखी से बात कर रही थी। आदित्य उसकी बातें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसे सुनैना की फिक्र थी। वो दोबारा उसकी तरफ आते हुए बोला, सोना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, और मैं क्यों दूर रहूंगा तुमसे, मैं आधी हूँ तुम्हारा आधी, तो मुझे ऐसे ये सब क्यों बोल रही हो, पहले की तरह क्या हुआ है, तुम्हारे सिर में दर्द ज्यादा है क्या, चलो हम हॉस्पिटल चलें। सुनैना को समझ आ गया कि उसके सिर में दर्द है। पीछे मुड़कर उसने शीशे में देखा तो अपने सिर पर बंधा हुआ बैंडेज देखा। उसने अब थोड़ी धीमी आवाज में बात की, लेकिन आदित्य के नज़दीक आते ही वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और अपने आप में बड़बड़ाने लगी, ये चोट मुझे, हाँ वो मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था, हाँ जब विराज ने मुझे प्रपोज किया था वहाँ उस होटल में पार्टी के बाद, हाँ उसी वजह से मुझे ये चोट लगी होगी शायद, लेकिन उसके बाद, उसके बाद तुम यहाँ कैसे, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, और तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, मेरा तुम्हारा आदि ये सब क्या है, और सोना, तुम मुझे सोना क्यों बुला रहे हो, सुनैना नाम है मेरा। आदित्य भी बिस्तर से उतरकर उसके सामने खड़ा हुआ और एकदम सीरियस आवाज में बोला, सोना देखो बहुत हो गया मजाक, मैं सुबह सुबह मजाक के मूड में नहीं हूँ, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उस पर ऐसी बातें तो मत करो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुनैना उसकी तरफ देखकर तंजिया लहजे में हंसती हुई बोली, मैं क्यों कोई मजाक करूंगी, वो भी तुम्हारे साथ, और क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रही हूँ मिस्टर आदित्य सिंघानिया, इसलिए सच सच बताऊं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते, और ना ही मैं तुम्हें कुछ खास पसंद करती हूँ, तो फिर ये सब कैसे, कब तुम नशे में थे ना कल रात, अभी भी नशे में ही होना। उसकी बातें सुनकर आदित्य थोड़ा इरिटेट होता हुआ बोला, बहकी बातें खुद कर रही हो और नशे में मुझे बोल रही हो, मैंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया सुनैना, पागल हो गई हो क्या, तुमसे प्रॉमिस करने के बाद मैं अब जल्दी ड्रिंक नहीं करता, पता तो है तुम्हें, फिर क्यों ये सब। वो उसकी बात पर ना यकीनी से बोली, तुम मुझसे क्यों कोई प्रॉमिस करोगे, और मुझे भरोसा नहीं है कि कोई भी ड्रिंक करने वाला इंसान इतनी आसानी से ड्रिंक छोड़ सकता है, वो भी इतनी जल्दी। सुनैना अपनी बात बोली रही थी और आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो अपना सिर पकड़कर उसके सामने खड़ा हुआ सोचने लगा। वो दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला और स्वीटी कमरे में आते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना भैया भाभी, वैसे भाई आप लोगों से कोई मिलने आया है। स्वीटी को ये बोलते सुनकर सुनैना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, उसने उसे भाभी कहकर बुलाया। सुनैना ने कहा, एक मिनट, तुम कौन हो, कल तक तो इस आदित्य सिंघानिया की कोई बहन नहीं थी, तो फिर तुम हमें भैया भाभी क्यों बुला रही हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। स्वीटी की बातें सुनकर स्वीटी हंसते हुए बोली, भाभी आप मजाक अच्छा कर लेती हो, लेकिन अब ये मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी नीचे आओ आप दोनों, और भैया वो आपका कोई फ्रेंड आया हुआ है। फिलहाल सुनैना को इग्नोर करते हुए आदित्य ने स्वीटी की बात का जवाब दिया, हाँ ठीक है तुम उसे बैठने को बोलो, मैं बस आता हूँ। सुनैना बहुत कंफ्यूज होते हुए आदित्य से सवाल करने लगी, एक मिनट रुको, ये सच में तुम्हारी बहन है क्या, हमारी शादी वाले दिन, उस दिन तो मैंने इसे नहीं देखा था, तब ये कहाँ पर थी, फिर उसके बाद भी, और ये ऐसे क्यों बोलकर गई, वो भी हंसते हुए, मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ। सुनैना का सवाल सुनकर आदित्य अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, मजाक नहीं कर रही हो तुम, पागल बना रही हो हम सबको, और यहीं रुको तुम दो मिनट, मैं बस अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर सुनैना तुनकते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, और मैं क्यों रुकूं यहाँ पर, वो तो वैसे भी दोनों को ही बुला कर गई है, मैं भी साथ ही आऊंगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आदित्य ने अपनी शर्ट के बटन बंद किए और बाल सही करते हुए अपना सिर हिलाते हुए कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। सुनैना भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर आई और वो दोनों ही नीचे हॉल में आए। स्वीटी ने जैसे ही उसके दोस्त का नाम लिया, आदित्य समझ गया कि जरूर अनय ही आया होगा, उसके अलावा फिलहाल आदित्य का कोई भी दोस्त नहीं है जिसे उसके घर का पता हो। आदित्य ये भी समझ गया कि वो सुनैना के बारे में पूछने आया होगा, जब वो हॉस्पिटल से सुनैना को घर लेकर आया था तब अनय वहां पर नहीं था। इतनी सारी चीजें चल रही थी, इन सब में आदित्य उसे कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म करना भूल गया था। आदित्य तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। जैसे ही वो लिविंग एरिया में आया, वहां बैठा अनय उठकर खड़ा हो गया। थोड़े गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए उसने शिकायती लहजे में कहा, चलो खैर मुझसे मिलने तो आ गया तू, नहीं तो मुझे लगा था शायद पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसकी शिकायतें सुनकर आदित्य काफी कंसर्न से बोला, अरे यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है और क्या हो गया, इतना भड़का हुआ क्यों है।
अनय ने उसी तरह से नाराजगी दिखाते हुए बोला, भाभी को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, पता है उसके बाद में हॉस्पिटल भी गया था, तब वहां से मुझे पता चला कि भाभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, उसके बाद से मैंने तुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, मुझे इतनी फिक्र हो गई थी, पता नहीं सब ठीक है या फिर नहीं। अभी सुबह उठते ही सुनैना की उल्टी सीधी बातों को याद करके आदित्य ने मायूसी से कहा, अभी तक तो सब ठीक था यार, लेकिन लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं है। जब से सुबह सोकर उठी है सुनैना, पता नहीं कैसा अजीब बर्ताव कर रही है और उल्टा सीधा कुछ भी बोल रही है। अनय उसकी बातें सुनकर मतलब समझने की कोशिश करने लगा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य के पीछे से वहां आती हुई सुनैना की आवाज़ आई, क्या मतलब है उल्टा सीधा और कुछ भी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं तो बस तुमसे कुछ सवाल पूछ रही थी। लेकिन अजीब बर्ताव तो तुम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे ही सिर पर चोट आई है। सुनैना की बातें सुनकर अनय लगा कि वो भी उसी तरह किसी बात को लेकर आदित्य से नाराज़ है। वो उसकी तरफ आते हुए बोला, हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमेशा ही ऐसा बर्ताव करता है और फिर सारा इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देता है। वैसे आप बताइए, अब आप कैसा फील कर रही हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? अनय को इस तरह अपने पति से बात करते हुए सुनकर सुनैना ने फिर से कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा, अब तुम कौन हो, एक और भाभी कहने वाला? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी कल तक तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था, न मेरी ननद, न मेरा देवर, और अब एक एक करके सब अचानक से सामने आ रहे हैं। आदित्य बताओ कौन है ये? आदित्य बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्या बताऊँ मैं, और कौन सा तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो? सुनैना देखो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, आराम से बैठ जाओ, और ये बताओ तुमने अपनी मेडिसिन ली थी या फिर नहीं? सुनैना अब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होती हुई बोली, मैं क्यों आराम से बैठ जाऊँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, सिर में बस थोड़ा सा दर्द है, लेकिन बाकी मैं ठीक हूँ। और तुम तो मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे कि मैं पागल हूँ या फिर कुछ भूल गई हूँ। क्रमशः